तो हमारा कोई भी कर्तव्य नहीं है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, हम लोग सब कपास ओट रहे और इसीलिए परस्पर भाई भाई शत्रु हो रहे हैं और शत्रु भी मित्र हो रहा है, किंतु असल में कुछ नहीं। इसलिए अपने तत्व में भ्रम होता है, ये हम लोगों को नहीं होनी चाहिए। परतत्व में भूल हो जाता है। परतत्व क्या है? काली जी हैं, दुर्गा जी परतत्व हैं, न गणेश परतत्व हैं, न मैं खुद ही परतत्व हूं, न कृष्ण परतत्व हैं, न द्वारकाधीश हैं। अरे सभी एक हैं, मूढ़ी मिश्री सब एक दर। जो कृष्ण है वही काली है, जो ब्रह्म है शंकर जी, और यहां तक कि मैं भी वही ब्रह्म हूं, दूसरा कोई तत्व नहीं। यह गलत है, हम ब्रह्म नहीं है। यदि हम ब्रह्म रहते तो गुरु जी कहते थे हम लोगों के तत्विद तत्व जज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। इस श्लोक का बदंति तत्विद तत्व, तत्विद लोग ऐसा कहते हैं, तत्व को जानने वाला ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? परतत्व अखंड ज्ञान स्वरूप वो तत्व है। बदंति तत्विद तत्व जज ज्ञानम अद्वयम, अद्वयम वहां पर बतलाया। अद्वयम का क्यों कहा? यदि दो ही नहीं रहता तो वो अद्वय क्यों कहते? किंतु दो होने पर भी एक के अधीन दूसरा है, उसकी सत्ता इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उसके अधीन जीव और जगत है, स्वाधीन कुछ नहीं है। इसलिए वो परतत्व कैसा है? असम्य अतिशय असमोद्ध, उसके समान कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं है, किंतु अद्वितीय है। अद्वितीय योद्धा लाखों में से एक होता है, ऐसे ये लाखों जीवों में से यही परतत्व है। इसलिए ब्रह्म कहने पर भी परब्रह्म होता है, इसलिए ब्रह्म से परब्रह्म श्रेष्ठ है। आत्मा से भी परमात्मा होता है, इसलिए आत्मा से भी ये आत्मा परमात्मा श्रेष्ठ है। किंतु भगवान से परम भगवान ये नहीं होता, स्वयं भगवान हो सकता है। इसलिए ब्रह्म आत्मा और भगवान एक नहीं है, इसमें वैशिष्ट्य है, इस चीज को जानना चाहिए। इसलिए कृष्ण ही आराध्य है, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई आराध्य नहीं है, किंतु शक्ति समन्वित कृष्ण, इसलिए शक्ति श्रीमती राधिका जी पराशक्ति हैं, लादिनी शक्ति हैं, उनके साथ में संयुक्त है। जो लोग शक्ति और शक्तिमान नहीं मानते, केवल शक्तिमान मानते हैं या शक्ति मानते हैं, वो असुर कहलाते हैं। रावण कंस इत्यादि जितने थे सब असुर थे, केवल शक्ति मानने वाले थे, शक्तिमान नहीं मानते हैं, इसलिए निर्विकार निर्विशेष कहते थे, ये हमारा आराध्य नहीं है। इसलिए परतत्व में भूल नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए, साध्य और साधन में भ्रम नहीं होना चाहिए, यह भी एक भ्रम है। स्वतत्व परतत्व और साधु और साध्य, यदि इस विषय में अधिक जानना है तो चलो हम लोग चले महाप्रभु और जहां राय रामानंद जी विचार कर रहे हैं साध्य साधन का, वहां चलो, उसमें चूड़ांत विचार किया गया है। साधन क्या है, साध्य क्या है? पहले साध्य स्थिर होगा तब साधन होगा, पहले साधन स्थिर करके साधन नहीं होता। पहले हमको किस चीज की जरूरत है, आवश्यकता क्या है, और तब फिर उसको पाने के लिए उपाय चाहिए। हमको धन कमाना है, लक्ष्य रखा, अच्छा तो अपने बेटे को पढ़ाओ, बेटे के पढ़ाने से क्या होगा, ऐसी चीज पढ़ाओ जो कि उसे धन कमा सके,
ऐसी चीज करो तो उस विद्या से धन को पाएगा। तो इसलिए धन को पाने के लिए शिक्षा इत्यादि साधन हुआ। ऐसे कोटि कोटि साध्य और साधन है, जो अंतिम साध्य है वो है ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर अखिल रसामित सिंधु सर्वशक्ति समन्वित, उन्हीं से बद्ध और मुक्त जीव निकलते हैं। एक नित्य बद्ध अर्थात अनादि बद्ध और एक नित्य मुक्त, नित्य मुक्त उनकी सेवा करते हैं। और ये बद्ध जीव जो है ये दो प्रकार के, एक उन्मुख और एक विमुख। उन्मुख वाले क्रमशः साधन भज में आप लोग सभी उन्मुख हैं, हम लोग सभी उन्मुख हैं, भगवान की तरफ में चल रहे हैं, कोई कम या अधिक। और विमुख वो अलग हैं। इस उन्मुख में भी भक्ति विनोद ठाकुर ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने पांच प्रकार के बतलाए, आच्छादित चेतन, मुखलित चेतन, मुखलित चेतन, विकसित चेतन, पूर्ण विकसित। मुक्त लोग जो है वो पूर्ण विकसित है, मुक्त में भी पूर्ण विकसित में भी फिर विचार है, विकसित में विकसित, पूर्ण विकसित, पूर्णतम विकसित। ब्रज वाले जितने हैं ये पूर्ण विकसित, और उन ब्रज में भी पूर्ण विकसितों में भी फिर विकसित, पूर्णतम विकसित, पूर्णतरम विकसित, अपूर्णतम विकसित। रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जितने हैं ये सब पूर्णतम विकसित जीव है, जो कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। ये सब साधन और साध्य तत्व जानना चाहिए, इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। भक्त ही एकमात्र साधन है और साध्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण नहीं, कृष्ण का मिलना ही साधन, ये साध्य नहीं है कृष्ण प्रेम। क्यों? कंस ने भी, रावण ने भी, श्रीकृष्ण ने भी भगवान को पाया किंतु युद्ध किया। इधर जिसको प्रेम भक्ति है वही उनको परिपूर्ण रूप में उनको पा सकता है, उनके स्वरूप को समझ सकता है। इसलिए साध्य और साधन में भी बिना भक्ति के भगवान को नहीं पाया जा सकता। इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा, भक्ति रेमैनं दर्शयति, भक्ति रेमैनं नयति, भक्ति वशो पुरुषा, भक्ति रेव भूयसी। बिना भक्ति के नहीं पा सकते। सुखदेव गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, अहम वेद्मि सुखो वेत्ति, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न ठीक है। मैं नृसिंहदेव के प्रसाद से मैं समझता हूँ कुछ, नृसिंहदेव की का प्रसाद होता मैं जानता हूँ, नृसिंह नहीं, मैं भगवान की कृपा से। कैसे? बिना भक्ति के भागवत नहीं हो सकता है जानना। इसलिए उसके अनुगत जो शास्त्र हैं वो भी शास्त्र हैं, हमारे गोसाइयों के शास्त्र परिपूर्णतम शास्त्र हैं। यदि ये सब तत्व को जानना है तो हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों को, विशेष करके जीव गोस्वामी के ग्रंथों का अवलोकन करो। और एक है विरोधी भ्रम। विरोधी भ्रम माने हमारे लिए विरोधी क्या है? जैसे अभी इस समय हम लोग सोचते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 10, 20 लाख रुपया मिल जाए, मिल जाएगा तो क्या करेंगे? सोने का मंदिर बना देंगे, उसमें ठाकुर जी को रखेंगे, वैष्णव को बुला करके सेवा करेंगे। कल बतलाया था इसी को, ये क्या नारद जी का यह भाव, ये अभी मूर्छित कसाय, ये मूर्छित कसाय है। एक हिरण के बच्चे को रखने से कहां भरत जी चले गए? इसलिए ये सब मत मांगो, ये विरोधी तत्व है भाई, ये बतला रहे हैं। भाई हम प्रचार करेंगे, विशेष करके महिला कहती है कि हम पुरुष लोगों में प्रचार करेंगी, और पुरुष क्या कहता है कि हम महिलाओं में हम प्रचार करेंगे। भाई ये भी माया है, इसको भी समझो। जिनका अधिकार है वो करेंगे, हम लोग डूब मरेंगे, ये भी विरोधी भाव। यदि भजन करवा यदि इच्छा ना कि गौर, यदि प्रणय राखते चाओ गौरांग, तबे छोटो हरिदास कथा थाके जनो मने। तो यदि महाप्रभु जी को प्रश्न किया जाए कि आप वो सिखी मैती की बहन माधवी देवी को आधा आधा में क्यों रखा, उनसे हरि कथा क्यों बोलते हैं, गंगा माता ठाकुरानी जी को क्या कहेंगे, माधवी देवी को क्या कहेंगे, हेमलता ठाकुरानी जी को क्या कहेंगे, मीराबाई को क्या कहें। जीव गोस्वामी से उसने पूछा, जीव गोस्वामी कहे हमारे पास में कोई नहीं आता है, मत आना, कोई कोई स्त्री नहीं आएगी। तो उसने वहीं से कहा, मैं तो समझती थी ये ब्रज में एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण, आज द्वितीय कौन पुरुष यहाँ पर पैदा हो गया। जीव गोस्वामी ने बड़े प्रेम से, हाँ सब ठीक, तुम योग्य है, लेकर के उसको मंत्र इत्यादि दिया। किंतु मंत्र लेने से संग इतना नहीं किया, इसलिए द्वारका में चली गई और वहां पर द्वारकाधीश में मिल गई ब्रजेंद्र नंदन की श्रीमती राधिका के अनुगत्य में, भजन उनका नहीं पूर्ण हुआ। इसलिए विरोधी तत्व को समझो, ये विरोधी तत्व क्या है। संसारिक जितनी भी चीजें हैं ये भगवान की सेवा की उपकरण है, ये बात ठीक है। प्रत्येक चीज ये विश्व का भगवान के सेवा का उपकरण है, हम लोग भी भगवान के सेवा के उपकरण है। जो कुछ इस जगत में है, महिलाएं भी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी है, किंतु इसको जो व्यवहार कर सकता है उसके लिए। हम लोग के संप्रदाय में है, एक समय कोई व्यक्ति थे यहाँ के बड़े विद्वान आदमी, भक्त लोग, ऐकांतिक भक्त, गोपाल जी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। उन्होंने देखा जी एकादशी के दिन पान खा करके आए हैं। मैंने कहा जी आज पान खा करके आए एकादशी के दिन, तो प्रभु ठाकुर जी को अर्पण किया था, राधा बल्लभ जी को अर्पण किया, तो ये कहाँ फेंक दूं, इसलिए मैंने ली। अच्छा तो तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया आज? हाँ। क्या क्या भोग लगा? पूरी कचौड़ी इत्यादि सब लगा। तो तुम उसको क्या फेंक दिया? तो नहीं, तो क्या किया? मैंने प्रसाद पाया। तो एकादशी के दिन भी प्रसाद पही पाया। अच्छा ठीक, जाओ आज से मत कहना कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, और मैं भी आज से भूल गया कि तुम हमारा शिष्य है, अब ये संबंध नहीं होगा। वह सदा के लिए उनको हरि संबंध वस्तु तो है। तो हमारे गोस्वामी जी ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी इसकी अथॉरिटी है, उन्होंने क्यों उनको प्रत्याग कर दिया, ये सब विचार करना चाहिए। किंतु जब अधिकारी हो जाएगा, नित्य लीला में प्रवेश करने लायक, तो वहां पर कृष्ण के लिए जो पान है वो खा सकता है, खिला सकता है, मधु भी पान कर सकता है, मधु भी पान करा सकती है, वहां का विचार दूसरा है। और वो क्या चीज है अपराकृत सभी, इसलिए ये सब का विचार करना चाहिए। हमारे भजन में विरोधी क्या है, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, कभी हमने साधन को गलत साधन तो नहीं चुन लिया? जो हरि भक्ति का विरोधी है उसको तो हमने नहीं चुन लिया साध्य और साधन के रूप में। इसलिए ये चार प्रकार के भ्रम साधु संग में तत्पक्ष गुरु के साथ में ये सबको दूर कर देना चाहिए। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, असत तृष्णा आही को ऐसना पारत्रिकेशु चैसना अशुभा भूति बांछा मुमुक्षा ची असत तृष्णा चतुर्विध विधा। अहिक माने लौकिक, लौकिक जितनी प्रकार की आकांक्षाएं हैं उनको भोग करने की, ये असत तृष्णा है। जो कुछ लौकिक चीजें हैं मैं इसको भोग करूंगा, सुंदर रूप देखूंगा, सुंदर टेस्ट करूंगा, सुंदर चीज खाऊंगा, सुंदर चीज कानों से सुनेंगे, कोमल चीज अपने त्वचा से स्पर्श करेंगे, मरेंगे हम लोग। प्रदीप को देख करके कीड़े सब जिनको पंख उग जाते हैं चींटियों को, वो पतंगे आग में जल मरते हैं, सोचते हैं यही हमारे खाने की वस्तु है। हाथी हथनियों के स्पर्श से सारा जीवन के लिए जाल में पड़कर अपना स्वतंत्रता खो देता है। मछली एक जीवा के लालसा से अपने प्राणों को विसर्जित कर देती है। हिरण कान के श्रवण की ध्वनि से वशीभूत होकर के अपने प्राणों को कैसे गवा देते हैं। अरे मुंगों का तो एक एक है और हम लोग कुछ बस इंद्रियां हैं, दसों गुरु से खाएं चरण बड़ा भारी मुश्किल है। इसलिए इन इंद्रियों को विजय करके भगवान में भजन करना ये बहुत कठिन बात है। कभी कभी हम नहीं चाहते वे भी अवश्य हो करके इनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, हरि गुरु वैष्णव को छोड़ देते हैं, पागल कुत्ते जैसे हो जाते हैं। इसलिए गुरु वैष्णव से हा सौत दामोदर, हा राय रमानंद प्रभु, हे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, आप लोग उन भक्ति पथ के सेनापति हैं, आप हमारी रक्षा करें। गुरु वर्ग से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु वैष्णव का संग मत छोड़ो, चाहे लाख हो जाए भजन हो और न हो, गुरु वैष्णव का अनुगत्य मत छोड़ो। यदि छोड़ा जी समय छोड़ेगा माया तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए हम उनकी इस जन्म में सेवा करते रहेंगे, उनके साथ नहीं छोड़ सकते हैं, जो कुछ हो जाए बस इतना भी हो जाएगा हमारा कल्याण हो जाएगा, इस जन्म में नहीं दूसरे जन्म में हम भजन कर लेंगे। इसलिए वैष्णव का संग किसी भी हालत में जितना क्रोध हो जितना जो कुछ हो जाए वैष्णव का संग मत छोड़ो, उनका अनुगत्य मत छोड़ो, नहीं तो सर्वनाश अवसंभावी है। इसलिए ऐहिक ऐसा यदि भजन करना चाहते हो तो छह प्रकार के ये वेग हैं, मन वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर वेग, उपस्थ। इन वेगों को जो सहन कर सकता है वही जगत गुरु है। इन वेगों को कैसे समर्थ होंगे हम इनको शासन करने में, बिना गुरु सेवा का नहीं होगा। वैराग्य के द्वारा कुछ कुछ मन पर कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ कुछ और उपायों से साम दम तितिक्षा इत्यादि के द्वारा, वैराग्य के द्वारा और शब्द के द्वारा पेट पर भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जीवा पर भी कुछ कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, किंतु गुरु सेवा के द्वारा अखंड रूप में सभी चीजों का दमन हो जाता है। वैष्णवों की सेवा से सभी चीज का दमन अपने आप हो जाता है। यह समझो उपमा देकर के कहा गया, जैसे सूर्य है और नीचे कमल है, पानी के अंदर में यदि कमल है तो सूर्य उसको खिला देगा और सुगंध बढ़ा देगा और प्रस्फुटित हो जाएगा, और नीचे यदि पानी नहीं है और सूर्य हुआ उगता जाएगा, सूर्य ऊपर की तरफ में गर्मी बढ़ती जाएगी और उसे सुखा करके चूर मार कर देगा, जो पोषण करता है वही उसका शत्रु होकर के सुखा देगा। इसलिए भगवान सूर्य स्थानीय है और गुरु वैष्णव है जल स्थानीय, इनकी सेवा करते हुए भजन हम करेंगे तो वो हमको कृष्ण खिला देंगे, महाप्रभु जी खिला देंगे, प्रस्फुटित कर देंगे, हमारा भजन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण कर देंगे। और नहीं यदि गुरु वैष्णव का संपर्क नहीं अनुगत्य नहीं, हम अकेले भजन कर लेंगे तो गिरिराज गोवर्धन कृष्ण स्वयं श्रीमती राधिका भी जला करके खा कर देंगे, ये समझ रखो। इसलिए इन सब चीजों को याद रखो, अनुगत्य वैष्णव धर्म अनुगत्य का, हम अनुगत्य में रह करके सेवा करेंगे। ये मत समझो कि हमारे गुरु जी मर गए हैं वो नहीं अब है, मत समझो, गुरु कभी नहीं मरते हैं, कृष्ण जैसे नहीं मरते हैं। बहेलिए ने बाण से कृष्ण को मारा, वो कृष्ण मर नहीं गए, अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह के बाणों से उनका कुछ नहीं हो गया, और आग खा लिया, बीज खा लिया, बीच में डूब गए काली हृदय में, कुछ नहीं उनका हुआ, ऐसे ही समझो। इसलिए हमारे रक्षक वैष्णव लोग और गुरु हैं, गुरु और वैष्णव के अतिरिक्त जिसका और कोई रक्षक है समझो जी गया, उसका बेड़ा पार खत्म हो गया।
इसलिए गुरु वैष्णव में इस प्रकार की रख करके इंद्रियों को सहज ही विजय कर सकते हैं, कोई चेष्टा नहीं करनी होगी, अपने आप हो जाएगा। और भूति वांछा माने क्या, विभूति, योग अभ्यास के द्वारा कोई एक योगी है उससे जाकर के विभूति, विभूतियां बहुत प्रकार की हैं, जिनमें लघिमा गरिमा प्राप्ति ये सब वशीकरण कर देगा, और जो चाहेगा ऐ तुम मर जाओ मर जाएगा, ऐ जीवित हो जाएगा। ये सब सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के पीछे मत पड़ो। ज्योतिष विद्या सीख करके सब जहन्नम गए। वैष्णव जो कहते हैं हरिनाम का आश्रय गुरु की सेवा करते हैं, यदि वो ज्योतिष का चर्चा की तो इस काल उ काल दोनों काल सब खोवाई लो, खाई लियो अपना माथा, मत जाओ इधर में। अरे भगवान नाम सर्वशक्तिमान है, उसको छोड़ करके ये ज्योतिष की चर्चा करना और ताबीज और गंडा इत्यादि धारण करना, ये भक्ति का विरोध है, मत जाओ उधर में। ज्योतिष का पुस्तक चर्चा मत, हम जानते हैं कि हमारे मठ में बहुत से लोगों के पास में ज्योतिष की पुस्तक है, वहां देखना सीख रहे हैं, मत सीखो, जहन्नम में जाएगा। ज्योतिष जो जानने वाले हैं, अरे वही तो भूखों मर रहे हैं, जिसके पास में जाएगा, बड़े बड़े ज्योतिषियों को जानता हूं, उनको खाने को नहीं मिलता, वो तुम्हारा क्या कर देंगे ज्योतिष वाले। इसलिए यदि कुछ होगा तो हरिनाम के द्वारा होगा। कि अच्छे श्लोक था, जो चाहते हैं कुछ नहीं चाहते, अकामो सर्व कामो मुख्य काम उदार भी तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम। हरिनाम के द्वारा सब कुछ हो जाएगा भाई, योग सिद्धि, जो हरिनाम एकांतिक रूप में करता है उसको क्या होता है, योग सिद्धि इत्यादि सब उसके पीछे पीछे हाथ जोड़ करके रहते हैं। क्या है श्लोक, भक्ति स्वयं स्थित तरह यदि दैवे न फल दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मात धर्म अर्थ काम गतया समय। समय की प्रतीक्षा करते हैं ये सब, किसकी, भक्त की। भक्त कभी कामना करे सिद्धि और ये सभी चीजें, ये कहते नहीं नहीं हमको जब भागो भागो यहां से, और वो पीछे पीछे समय की प्रतीक्षा करते हैं। कैसे, जैसे कृष्ण अपनी लीला में उस समय ऐश्वर्य को अपना छिपा करके रखा है, किंतु ऐश्वर्य शक्ति उनके पीछे पीछे दौड़े तो प्रभु की इच्छा हो जाए। कृष्ण ने सोचा मैया हमें मत बांध, मैं खेलूंगा कैसे, मैं बच्चों के साथ में खेल नहीं सकता, मैया मुझे मत बांध, यही समय की प्रति। इतने में जुग माया ने शक्ति ने आकर के झट ऐसा किया, कमर भी नहीं बढ़ा और रस्सी भी बढ़ी नहीं जितनी की थी उतने ही, और उसी में कृष्ण बढ़ गए, ओखल को भी बांध दिया। इसे भक्ति से बढ़कर के क्या हो सकता है, इसलिए भूति की वांछा मत करो, भक्ति को नष्ट कर देगा, भक्ति क्या नष्ट कर देगा यही इच्छा बुली। और मुमुक्षा मुक्ति की इच्छा मत करो, ये भक्ति विरोधी है। मुक्ति तो अपने आप वैष्णव को हो जाती है इसी शरीर में, इसी शरीर में हो जाती, कैसे, पीछों से अनासक्त हो गए मुक्ति हो गई। इसलिए मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है, और उस जो भगवान में मिलने की मुक्ति कहते हैं वो भक्ति का विरोधी है, उसका लोक परलोक समस्त नष्ट हो जाएगा। इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए। ये चार प्रकार की असत तृष्णाएं हैं, संसारी लौकिक कोई वस्तु, रुपया पैसा धन संपत्ति पद गौरव प्रतिष्ठा, ये सब चीजें मत रखो, किंतु यही मुश्किल है छोड़ नहीं पा। रघुनाथ दास को स्वामी कहते हैं कि यह गधही का मूत्र है, मन हमको मत जलाओ और उसे स्नान करके और अपने जीवन को बर्बाद मत करो, इसलिए इस सब चीजों को दूर करो। भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अभ्युदय भवे। भक्ति बड़ी कोमल अंगल है, बड़ी कोमल अंगों वाली,
बड़ी सुकुमार है, इसलिए जहां भुक्ति और मुक्ति की इच्छा आती है, अरे मुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा। इसमें बहुत सी बातें हैं, मुक्ति पिशाची कैसे है, मुक्ति पिशाची नहीं है, मुक्ति की इच्छा जो है ये पिशाची है। मुक्ति तो होना ही चाहिए हम लोग को, अग्रह मुक्ति तबे सर्व बंधन तबे हई वैसे कृष्ण, किंतु मुक्ति की इच्छा मत करो, वो तो भगवान नाम करने से, भजन करने से, ब्रज में बात कर अपने आप चुटकी बजाते आ जाए। इसलिए चार प्रकार की ये असत्तृष्णाएं हैं, और अपराध चार प्रकार के बतलाए। क्या प्रकार के अपराध, क्या हुआ, चार प्रकार के अपराध। एक कृष्ण का प्रति अपराध, एक कृष्ण नाम के प्रति अपराध, वही कृष्ण ही स्वरूप है, कृष्ण के प्रति, स्वरूप के प्रति, तदीय वस्तुओं के प्रति, वैष्णव, तुलसी, गंगा, जमुना, वैष्णव, भागवत, ये सब तदीय है, इनके प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। कृष्ण नाम के प्रति अपराध, दस प्रकार के अपराध हैं, नहीं होना चाहिए। सेवा अपराध नहीं होना चाहिए। और कितकनेशु, किसी जीव के प्रति भी अपराध न हो। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण दिशा, किसी जीव को भी, प्राणी मात्र को भी उद्वेग मत दो। कृष्ण के ये सभी जीव कृष्ण के प्रिय हैं, कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण उनमें रहते हैं। ये चार प्रकार के अपराध हैं, चारों प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए। अब चौथा आया हृदय दुर्बल, इसके बाद में कह रहे हैं तुच्छ आसक्ति, आसक्ति से चित्त दुर्बल होता है। आएगा जब मैं विवाह करूं कि न करूं, अरे सभी लोगों ने तो विवाह किया, महाप्रभु के गणों ने और जितने हैं गोपियों ने भी विवाह किया, ये क्या हर्ज है। फिर थोड़ी देर में बात आया, गुरु जी ने वैष्णव ने कहा जे भाई ये तो ढका हुआ आग का कुआं है, जल मरोगे, मत करो। कहा जे अब नहीं करना, किंतु बाद में हमारा पिंड कौन देगा, कौन पिंड देगा, वंश परंपरा कैसे चले, तुम्ही को इसका ये है। अब तो सभी यदि मुक्त हो जाए तो ये जगत कैसे चलेगा, माने कृष्ण ने उनके ऊपर में ही इसका दायित्व दिया है, ये तुम देखो। बहुत से लोग कहते हैं अच्छे बतलाओ तो सभी मुक्त हो जाएंगे तो ये जगत कैसे चलेगा, तुम्हारे ऊपर में भार है। एक छागल, छागल माने बकरी, उसके समस्त अंगों में केस है, एक एक केस गिर भी गिर गया तो बकरी का क्या हर्ज हुआ, उसके लाखों केस हैं। वैसे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड में अनगिनत जीव, उसमें से एक ब्रह्मांड तर भी गया तो क्या हर्ज हुआ। तुम चिंता मत करो, तुम भजन करो तो ऐसी तुच्छ आसक्ति नहीं हो, आसक्ति से चित्त दुर्बल हो जाता है। कुछ लोग आसक्ति भीतर में संसारी के रहते हैं, गुरु वैष्णव से जरा दूर रहते हैं, उनके निकट नहीं रहते। ऐसा नहीं करना, गुरु जी कहते थे कि हम लोगों से जो दूर रहते हैं, हमसे जो दूर रहते हैं, समझे कुछ आसक्ति है, नहीं तो दूर नहीं रहते। देखेंगे यदि वो इस पर गड़बड़ कर दें, उनकी दृष्टि में पड़ जाए, ऐसा मत करो। अपना हृदय खोल करके गुरु जी के सामने, वैष्णव के सामने रख दो, जो कुछ हो वो देखे। कुछ विशेष निषेध जितने हैं शास्त्रों में, हरिभक्ति विलास में, इन सबको मानना चाहिए, इनको निषेध दूर, भक्ति से दूर रखना चाहिए। मास्तर्य और गुणों को, दुर्गुणों को तो हम काम में लाएंगे, किंतु मास्तर्य किसी काम में नहीं आता। द्वेषपूर्ण शत्रुतापूर्वक व्यवहार मत करो, किसी से द्वेष मत करो, मात्सर्य मत करो। तो उन्होंने हमको मारा, हम उनसे कुछ नहीं करें, अरे उन्होंने नहीं मारा, तुम्हारे कर्म ने मारा, ये सुनते हैं किंतु काम के समय में भूल जाएंगे। काम के समय में मत भूलो इस चीजों को, उसने हमारा अपमान किया, नहीं उसने अपमान नहीं किया, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारा अपमान किया। इस चीज को समझना चाहिए भजन राज्य में, और नहीं तो ईर्ष्या होकर के डूब मरेगा। अरे गुरु की बात नहीं सुनते हैं सब, गुरु कहते हैं कि द्वेष मत करो, और हम लोग द्वेष करने लगते हैं। इसे द्वेष नहीं होना चाहिए, यह भक्ति का विरोधी है। यदि क्रोध है उसको भी हम काम में लगा लेंगे। हनुमान जी ने, ब्रजांग्र जी ने क्रोध करके लंका को जला दिया, कोई विवाद नहीं। ऐसे जितने भी दोष हैं ये सब काम में आ जाएंगे, दूसरे दुर्गुण हैं, किंतु मात्सर्य नहीं आता। स्व प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठा की कामना मत करो, ये भक्ति का प्रधान भावक है। स्त्री पुत्र को छोड़ देना, धन संपत्ति छोड़ देना ये सहज है, किंतु प्रतिष्ठा छोड़ना बड़ा भारी कठिन है। मान अपमान के लिए हम भक्जन को भी छोड़ देते हैं, इसलिए मत छोड़ो। हृदय दौर्बल्यम बुदय सत्सद गेयं किल चतुर्वे, ये चार प्रकार के ये हृदय दौर्बल्य, इन सब को छोड़ करके भगवान का भजन करो, राधा कृष्ण का भजन करो, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की जांचा करो, हम लोग भजन राज्य में प्रवेश कर सकते, अन्यथा भजने से प्रवेश। हम लोग अभी जाएंगे, अभी आज व्रत शेष होगा, मुंडन हम लोग करेंगे, अभी थोड़ी देर में यज्ञ होगा, इसके बाद में प्रसाद इत्यादि के बाद में सभी लोग देखेंगे बाजार में दौड़ेंगे, कोई सील लोढ़ा खरीदेंगे, कोई यहाँ की छपी हुई साड़ी खरीदेंगे, कोई कुछ खरीदेंगे, वृंदावन का चिन्ह लेंगे, थोड़ा सा लेने की चेष्टा करो। यदि थोड़ा सा भी ले लिया जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जो हम लोगों ने कहा, जो कुछ सुना हम भी लेंगे, आप लोग भी उस संपत्ति को लीजिए। वृंदावन की यही संपत्ति है, इसी को लेकर के हम घर में जाएंगे, और कोई चीज मत ले जाइए, बस इसको ले जाइए। इन चीजों को याद रखिए, हम लोग कहाँ कहाँ भ्रमण किया, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, कदम बटेर, उद्धव क्यारी, भांडीर बन, और वहां के लीलाओं को सुनाया। प्रतिदिन आप लोग वहां पर जाएंगे, उन लीला के स्थलों में कृष्ण की उन लीलाओं को प्रणाम करेंगे, क्रमशः चित्त भगवान में लगे, इससे बढ़कर के और कोई संपत्ति नहीं है। घर में जाकर के सब भूल मत जाएंगे, यही संपत्ति लेकर के आप लोग जाइए। आज हम लोग इसके बाद में अपना व्रत समाप्त करेंगे, व्रत समाप्त होगा किंतु व्रत समाप्त नहीं, आज से आरंभ करेंगे। अब जीवन में प्रतिदिन ये जो कीर्तन हम लोग कर रहे हैं, जो भावना हम लोगों ने दिया है, उन भावों को लेकर के कृष्ण का भजन करें। आज यही हम वक्तव्य समाप्त करते हैं। आज हम लोगों के गोपीनाथ गौड़िया मठ में दिव्य प्रतिष्ठा है, यहाँ पर जल्दी से अपना खौर काज इत्यादि करा लीजिए। मुंडन करने वाले शायद उनको अभी तुरंत हमारे पुजारी जी भी बुला लेंगे, और जल्दी से कर करके
तरंग मध्य कृपा मयी सां शरण प्रपन्ना वंदे नमस्ते चरणा अंग श्यामलिन छटाभिरभितो मंदीकृतेन्दी वरम जर्जन जागुदरोचि संग विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधा स्पंद निवेशितो ज्वलभुजं ध्यायेम दामोदर। मैं अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अश्वत सस्म भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में आंतरिक श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ। बैठो चुपचाप। तत्पश्चात परम पूज्यवाद
श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी पुरी महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने
ज्येष्ठ गुरु भ्राता परम पूज्यपाद प्रवेशकाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत बामन महाराज जी के चरण कमलों में आंतरिक श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे सतीर्थ सन्यासी वर्ग, वैष्णव एवं वैष्णवी वर्ग, आज हम लोगों का परम आनंद का दिवस है कि आज हम सेवा कुंज के अंतर्गत श्रीमती राधिका जी का ये कुंज कहलाता है, उसके अंतर्गत हम लोग श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में श्री विग्रह प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज अभी सवेरे से मध्यान्ह काल तक बड़े समारोह के साथ में और बड़ी अच्छी तरह से सुष्ठु रूप में श्री विग्रह प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। अभी हम लोगों ने प्रोग्राम में रखा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट और श्री विग्रह प्रतिष्ठा के संबंध में हमारे संप्रदाय का क्या विचार है, उसका क्या वैशिष्ट है, उसके संबंध में हमारे पूजनीय वैष्णवगण आचार्यगण इसके संबंध में बतलाएंगे। आजकल दुर्दिन का विषय यह है कि आज अधिकांश लोग भक्ति के विरोधी हो रहे हैं, शुद्ध भक्ति के विचारों को ग्रहण नहीं करना चाहते, समाज भी कुछ उल्टा हो रहा है, श्री विग्रह को आज मानना नहीं चाहते, एक पुतली की भांति स्टैचू की भांति रखना चाहते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा वैष्णवों से आचार्यों से, जो आज श्री चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट और अवतारों की अपेक्षा और विशेष करके उसके अंतर्गत हमारे संप्रदाय में श्री विग्रह का तत्व किस रूप में ग्रहण किया जाता है, इसके संबंध में ये लोग कुछ कुछ अपने विचारों को प्रकट करेंगे। पूज्यपाद हमारे आचार्य देव पूज्यपाद बामन महाराज जी ने हमसे कहा कि सबसे पहले हमारे पूज्यपाद शिष्यमत भक्ति वैभव पुरी महाराज जी अपने कुछ विचार प्रकट करेंगे इस विषय।
समर्पण करता हूं मैं अमर जागत क्षुद्र चलमती असया प्रसव भू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर बर वशो वंचन पर नृशंस पापिष्ठ कथमिहमितो दुःख जलधीर पारा दुस्तीर्ण सर्व परिचरेयम चरणयो। मैं अमर ज्ञान है, मेरी मर्यादा ज्ञान नहीं है, मैं अपराधी है, परे उद्वेग दिया थी जगो तो दिया थी जिरे प्लेस। मैं हर एक समय मानता हूँ कि मेरे दुर्बलता जो है इसको सबलता करके प्रकाश नहीं करना चाहिए, परंतु सदृशम चेष्टते सस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, जो पूर्व संस्कार हैं इस हमने छोड़ता नहीं है, वो अहंकार मुझे साधन कर लिया है, इसलिए हम वैष्णव गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन। तो वैष्णव को पहले नमस्कार। श्री चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं पतितानां पावरेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित गण के उद्धार करने के लिए आप सब प्रपंच में उदित हुए हैं, तो मैं पतिता धम हूँ, मुझे आप कृपा करना, जब कुछ अपराध तो होगा ही, बद्ध जीव है अपराध तो होता है, तब और शरण्य कोई नहीं है, वही वैष्णव अदोष दर्शी है, जब कुछ भूल भ्रांति होता है आप मुझे क्षमा करना और वैष्णव का दया यही आवश्यक है। तो आज जो सुदीन है ये भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का आविर्भाव हुआ है, श्री कृष्ण चंद्र का भूमि है यह, यही वृंदावन वैकुंठ मधुपुरी, वैकुंठ से श्रेष्ठ है मधुपुरी, मधुपुरी से श्रेष्ठ है वृंदावन, जहाँ नित्य लीला रास, और नित्य लीला रास में भगवान हमेशा है। तो आज हमको दर्शन देते हैं ये महाराज का अनुग्रह से, ये हमारी भाग्य है। तो आप अभी महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ वृंदावन आए हैं, और महाप्रभु वृंदावन में ये उसका क्या अक्रूर घाट में रहते थे, अक्रूर घाट से रोज सवेरे 6 बजे को आके 12 बजे तक इमली तला में बैठ के नाम करते थे, और 12 बजे को फिर वापस जाके और जो कुछ अतिथि का निमंत्रण है वो निमंत्रण स्वीकार करते। तो महाप्रभु का ये वृंदावन में जो अवस्थान है, और जितने सब लुप्त तीर्थ को उद्धार किए हैं और शक्ति संचार करके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी को लुप्त तीर्थ उद्धार करने के लिए शक्ति संचार किए हैं, और रूप गोस्वामी महाप्रभु का प्रिय है ये इसलिए कहते हैं, ये महाप्रभु का जो प्रसाद जो विषय है वही भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि मुदग्ध माधव ललित माधव और बहुत सा ग्रंथ रचना करके महाप्रभु का उद्देश्य, महाप्रभु का प्रसाद जो विषय है यही सब प्रचार किया है। यही सब यही भूमि सर्वोस्वामी सब छोड़ देके नाना शास्त्र विचारणिक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों लोकानाम हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्या करु, जो गोस्वामी वर्ग हैं सर्वगोस्वामी वर्ग हैं ये इधर आके ये मनुष्य समाज का बहुत उपकार किए हैं, सब तीर्थ उद्धार किए हैं, और महाप्रभु का जो विचार जो प्रचार जो विषय उसको स्थापन करके गए हैं। आज ये वृंदावन में जो कुछ लीला श्रवण करने के लिए अवकाश मिलता है यही रूप गोस्वामी का शिक्षा, नहीं तो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी और सब गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, चंपू वगैरह लिख के वृंदावन का महिमा प्रचार किया है। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देने के लिए आए हैं, और वृंदावन में उनका बहुत रोज स्थिति नहीं हुआ है, और वो पूरी चले गए हैं, पूरी में रह के भी ये वृंदावन का लीला प्रचार किए हैं, और वृंदावन में कहते हैं जब वृंदावन के उनका आनंद संपूर्ण आनंद अनुभव होता है, क्यों झारखंड में जब आते थे तब सब पशु पक्षी कीट पतंग सब महाप्रभु का हरिध्वनि श्रवण करके पास में आते थे, महाप्रभु सबको देख के समझते ही है यही तो वृंदावन है, जहाँ निर्भय जहाँ वैर भाव नहीं है, जहाँ शत्रुत्व नहीं है, जहाँ हिंसा नहीं है, वही भूमि है गोष्ठे समस्तं सर्वानंदमयं मुकुंद द्वैतं लीलानुकूलं परम। समस्त जीवराज सबका उद्देश्य एक है, सब भगवान का सेवा कर रहे हैं। यही गोलोक ही कलियुग में यदि यही गोकुल और गोकुल में जो कुछ है गोलोक में है, गोलोक में जो कुछ है गोकुल में है। महाप्रभु वही गोकुल का सिद्धांत प्रचार किए हैं। महाप्रभु जीव दया, यही जीव दया जब तक नहीं होता है तब प्रचार नहीं होगा है। ये कवे जीवे दया हुई दे उदय, निज सुख भूलि सुदीन हृदय, विनोद सेवक करिया विनय, श्री आज्ञा टहल करी प्रचार। आर कवे निताय चांद करुणा करी रे संसार वासना मोर कवे तुच्छ हरे। तो यही वृंदावन धाम में हम बैठे हैं आज। आप वृंदावन कहते हैं कि वृंदावन में बैठो, वृंदावन बैठ के भजन करो। कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम चतुर्ज्ञान तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निस्तात्म तेभ्यो सा पशुपाल पंकज साभ्यो पिशा राधिका प्रेष्ठा तद्वजीय तदीय सरसी सांगनाश्रेत कृति। जो वहाँ स्थान का महिमा कहा है, यहाँ भक्त का और सेवक का महिमा कहते हैं। जो कर्मी सत्कर्मी भगवान का प्रिय है और सत्कर्मी से ज्ञानी अधिक प्रिय है, ज्ञानी से भक्त और अधिक प्रिय है और भक्त से प्रेम भक्त अधिक प्रिय है, प्रेम भक्तों में गोपी भक्त अधिक प्रिय है, उसने राधिका है जैसा राधिका।